نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير Amazed by Allah's small husna. آج ہم اس سیریز میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت ہی خوبصورت نام الحق کریں گے. یہ لفظ ہم اردو بولنے والوں اور سننے والوں کے لیے کوئی نیا نام نہیں ہے. یہ لفظ ہم شروع سے ہی سنتے سناتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں. حق کا ساتھ دو, حق پر ہونا, حق والے, اپنا حق لو, حقوق و فرائض, بالکل اسی طرح کی چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو اس سے آپ کا واقعی ایک عجیب سا تعلق قائم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ سیریز ہمیں کلیئرٹی آف مائنڈ دے رہی ہے. ہم بہت سارے کام اپنی زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں لیکن کلیئرٹی نہیں ہوتی. تو جتنا زیادہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات پہ غور و فکر کرتے جاتے ہیں اتنا کم از کم یہ تو یقین ہو جاتا ہے نا کہ ہم حق کا ساتھ دیتے ہیں. اور اس وقت دکھ کے ساتھ کہوں گی کہ وہ لوگ جو اللہ ہی کے بندے ہیں اور ہم ہی جیسے ہیں, ہماری جیسے گوشت پوست کے مالک ہیں, لیکن چونکہ یقین نہیں ہے, چونکہ رب کو ماننا, رب کے ساتھ تعلق رکھنا شروع سے ان کے کانوں میں یہ جملے نہیں پڑے, تو وہ باطل پہ ہوتے ہوئے بھی خود کو حق پہ سمجھتے ہیں. اور آج ہم دیکھیں گے کہ اس حق کے سفر میں کس طریقے سے انسان اپنے آپ کو اللہ کے آگے بچھا دے کہ پھر اس کا دل کھل جائے. اللہم آرنا الحق کا حقم ورزقنا اتباعہ وارن الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ. اے اللہ حق کو ہمارے لیے حق کر کے دکھا دے, پھر اس کی اتباع کی توفیق بھی عطا فرما. باطل کو ہمارے لیے باطل بنا دے اور پھر اس سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرما. یہ دعائیں مانگ کر بیٹھا کریں. جتنا زیادہ آپ ان دعاؤں کے اوپر اپنا غور و فکر کریں گے, جتنا زیادہ آپ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے, غیر محسوس طریقے سے آپ کی زندگی ان چیزوں کے ساتھ جڑتی جائے گی. تو الحق کا لفظ اگر ہم دیکھیں تو یہ وہی ہے جس کو ہم حق کہتے ہیں. ہا قاف قاف اس کا روٹ ہے, حقیقی رب اور معبود. اسی طرح برحق اور برقرار رہنے والا, سچا اور حقیقی صفات والا, یعنی ہر طریقے سے حق کو آپ اگر لگا لیتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین معرفت دے دے, تو آپ یقیناً اس چیز کا بہترین طریقے سے اظہار کریں گے کہ جتنا زیادہ میرا مالک میرا ساتھ دیتا ہے, جتنا زیادہ میں اس کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑتی ہوں, اتنی میری زندگی میں سچائی آتی ہے. اور یاد رکھیے کہ حق کی ایک پہچان لکھ لیں بس, سکون, اطمینان, ٹھنڈک, کلیئرٹی آف مائنڈ, کلیئرٹی آف ہارٹ, کلیئرٹی آف ویژن. جب آپ حق کو پہچان لیتے ہیں نا, اور الحق آپ کی زندگی کو چاروں طرف سے اس کا گھراؤ کر لیتا ہے, تو آپ کے پاس سکون ہوتا ہے. یعنی آپ کہہ لیجئے کہ سکون جنت کی نعمت ہے. دنیا میں اس کو اللہ نے حق کے ساتھ جوڑ دیا. حق کا ساتھ, حق پر ہونا, حق لینا, یعنی جو بندہ حق پہ ہوگا نا, نمبر ایک تو اطمینان قلب ہوگا, دوسری بات اس کی کچھ مخالفت ضرور ہوگی. معاشرے میں جو ماسس ہوتے ہیں, جو بہت زیادہ کثرت لوگوں کی ہوتی ہیں, وہ باطل کا ساتھ دیتے ہیں. آپ قرآن میں پڑھ لیجیے اکثر ہم کے لفظ کے پاس کیا آتا ہے, ہمیشہ نگیٹو جا جاتی ہے, اللہ ماشاء اللہ, کیونکہ ان کو نفس اچھا لگتا ہے, ان کو موٹاپن اچھا لگتا ہے, ان کو اپنی ذات کے ساتھ جینا اچھا لگتا ہے. تو حق جب بھی آیا اور انبیاء کرام جب حق لے کر آئے, تو اس وقت ضرور ہی معاشرے کے کھلے ہوئے بڑے لوگ, معروف لوگ, جن کے دنیا میں بہت لمبے چوڑے معاملات ہوتے ہیں, انہوں نے کچھ نہ کچھ مخالفت کی. اور انبیاء کرام کے پاس سراسر حق ہوتا ہے, یعنی الحق وہ ہے جو اپنے نبیوں کو حق دے کر حق بھیجتا ہے. یعنی اگر آپ صرف اس ایک لفظ کو پورے قرآن پاک میں ڈھونڈیں تو کم از کم 2 گھنٹے مجھے چاہیے کہ میں آپ کے ساتھ اس حق لفظ کی ڈفرینٹ ڈائمینشنز شیئر کروں. لیکن آج ہم الحق پہ ہی رہیں گے, کیونکہ وہ خود بھی حق, اس کی بات حق, اس کی کتاب حق, اس کی جنت حق, اس کے وعدے حق, اس کی جہنم حق. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کے باطل کا کوئی گمان بھی نہیں ہے. تو جب آپ اصطلاحی معنی دیکھتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ الحق وہ ذات ہے जो बहुत बड़ा नाम है। ये अल्लाह सुबहाना ताला का वो नाम है जिसको आप इस्म आज़म कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा नाम है। अल्लाह ताला सूरत नूर की आयत 25 में फरमाते हैं, अन्नल्लाह हुवल हक्कुल मुबीन, बेशक अल्लाह ही हक है जाहिर करने वाला। यानी अल्लाह सुबहाना ताला के साथ जब आप ये लफ्ज़ जोड़ देते हैं तो आपकी ज़िंदगी एक दूसरी ही डगर पे चल पड़ती है। फिर आप अपने आप को महसूस करते हैं कि अच्छा, इधर ना बातिल की गुंजाइश है, ना झूठ की गुंजाइश है, ना हेरा फेरी की गुंजाइश है, ना मनमानी बातों की गुंजाइश है। यानी मेरे जहन में लफ्ज़ हक के साथ एक आईना आ जाता है, ट्रांसपेरेंसी, शीशा, जिसके अंदर बाहर एक ही है। छुपाते तो वो चीज़ है ना जिसका डर है। आजकल अक्सर लोग कहते हैं आपके चैट बॉक्स दिख जाएंगे, फलां गैजेट फलां गैजेट, उनको आपके कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे। वो तो भी अंदर क्या है छुपाने को? अक्लमंद इंसान अपनी चीज़ों को ऐसे तो नहीं फेंकता, हम तो खुद दिखाते हैं। तो अच्छा, फिर और भी देख लेते हैं चीज़ें, चले हमारे प्रोफाइल से कोई लोग देख लें। लेकिन जिसको कोई डर नहीं है, जिसके पास कोई बैड नहीं है, चलो हमारे अगर खोलेंगे तो अंदर कुरान ही है ना, चलो किसी को शायद इससे हिदायत हो जाए। तो ज़िंदगी में बहुत कुछ छुपाना, उसको ना बताना, उससे बताना, हाय छुपा के बात करो, हाय उससे ना हो, ये बातें इस बात की दलील है कि आप हक पे नहीं हैं। और जब आप अल्लाह सुबहाना ताला के नाम के साथ जुड़ते हैं, जब हकीकत में आपको लफ्ज़ हक समझ आ जाता है, तो फिर उसके बाद आप कभी नहीं पीछे होते। तकब्बुर की जो पहचान अल्लाह के नबी ने दी थी वो क्या थी? बतरुल हक की बगम दिन नास, जब हक आ जाए तो उसको झुटला देना और फिर अपने आप को दूसरी तरफ रख देना। क्या पता चला कि एक इंसान जब अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत से मजबूत तर देखता है तो उसकी ज़िंदगी खूबसूरतियों वाली होती है। और इस नाम के साथ अगर हम देखें तो सलफ सालेहीन के कुछ अक़वाल लेकर चलते हैं जिससे हमें ये नाम और बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा। और ये भी याद रखिए कि अपने अपने दौर के लोग अल्लाह के हर नाम के बारे में, अल्लाह के हर काम, हर बात, हर सिफत के बारे में अपनी सी बात करके गए हैं। जितना ज़्यादा आपका मेरा अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक मजबूत होता जाएगा, हमारा दिल गवाही देगा कि कौन सी बात किस जगह जाती है। तो इमाम कुशारी रहमहुल्लाह कहते हैं, अलहक वो है जो अपने वजूदे बरहक के साथ मौजूद है। जी, अल्लाह सुबहान ताला वो ज़ात है, अलहक वो ज़ात है जो अपने वजूदे बरहक के साथ मौजूद है। हम महसूस करते हैं कि नहीं, उसके होने को अल्लाह जाने, हमें नहीं पता वो किस तरह मौजूद है। हमने शुरू से एक जुमला सुना हुआ, अल्लाह ताला हाजिर नाजिर है, अल्लाह ताला हर जगह, अल्लाह ताला ऐसे है। देखिए, कुछ चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ऐसी जगह दिया करें कि जिसके बाद आप सिर्फ ऐसे ही ना बोला करें, जो लोग बोलते हैं मैं भी बोल दूँ। आप कहते हैं कि कब्र में कुछ लोग जिनकी ज़िंदगी वाज़े नहीं थी तो वो क्या कहेंगे? हम वही कहते थे जो लोग कह देते थे। यानी उनको लफ्ज़ अल्लाह कहना, रब कहना, या नबी सल्लम का नाम लेना, या इस्लाम की बात करने ही नहीं आएगी। लादरी लादरी, कौन है आप? पता नहीं, जो लोग कहते थे मैं वो कह देता था। तो इस तरीके से लोग अपने आप को इन चीज़ों के अंदर रखते हैं। फिर आप देखिए कि जब आप अल्लाह सुब्हान तआला के बारे में ये सारी चीज़ें समझने लग जाते हैं ना, तो फिर आप किस तरह बोलते हैं? मैं अरबी में बोलूँगी ताकि थोड़ा सा आप इसको जज्ब कर सकें। अलहक्कु मिन असमाईही वहुवा बिमानिल मौजूदिल काइन। यानी नाम है ये अलहक, लेकिन हकीकत में वो अपने वजूदे पर हक के साथ मौजूद है। फिर इसी तरह से इमाम हलीमी कहते हैं, अलहक वो ज़ात है जिसके वजूद से इनकार की गुंजाइश नहीं, और इसका सबूत और इसके वजूद का एतराफ़ लाजमी हो। सिर्फ अल्लाह जल्ला जलालहू का वजूद ही इस बात के लायक तर है, यानी ओनली ही डिजर्व्स, कि इसका एतराफ़ करना ज़रूरी है। इस ज़ाते हक जल्ला जलालहू के वजूद से इनकार की कोई गुंजाइश नहीं, इसलिए कैसी कोई बात वाज़े दलाइल से साबित नहीं होती जो अल्लाह ताला के वजूद को खिलाफ़े वाक़िया साबित कर सके। जी, अलहक कुमाला यसो इनकारुहू व यल्ज़म सबूतुहू व लेतराफ़ु बिही व वजूदुल बारी अज़्ज़ ज़िक्रुहू अउला मा यजिबुल एतराफ़ु बिही वला यसौ जुहूदुहू इस मा मुस्बिता यतज़ाहरु अलैहि मिनल दलाइलिल बैजिनतिल बाहिरा मा तज़ाहरत अला वजूदिल बारी जल्ल जलालुहू। तो ये इमाम बहकी की तरफ से ये आती है और इमाम हलीम है, यानी उनकी किताब है। बहरहाल रेफरेंसेस मौजूद हैं। बात का खुलासा क्या है अभी तक का? कि अलहक वो है कि जिसको कोई झुटला नहीं सकता, उसके मामलात में जो चीज़ें हैं उसका कोई इनकार कर नहीं सकता। इसी तरह इब्नुल आसीर रहमहुल्ला अलहक के बारे में फरमाते हैं, अलहक जल्ला जलालुहु वो ज़ात है जो हकीकतन मौजूद हो, इसके वजूद और माबूदियत को दलाइल से साबित किया गया हो। अलहक हुवल मौजूदु हकीकतन, यानी कोई फैंटसी नहीं है, ये कोई इमेजिनरी थिंग नहीं है, वो है, उसका वजूद है। अल मुतहक्ककु वजूदुहु व इलाहियतुहु, यानी ये एक मिथ नहीं। जैसे आप देखिए, इसको शायद आप ना समझ पाए इतना, क्योंकि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह खून में है कि अल्लाह है, लेकिन आज एथियस्ट नहीं मानते। कुछ लोग कहते हैं नहीं कुछ भी नहीं है गॉड, देर इज़ नो गॉड। ये देर इज़ नो गॉड का अपोजिट है बेसिकली, कि वो है, वो मौजूद है। अल्लाह सुबहान तआला अपने वजूद से साबित कर रहा है कि मैं हूँ इस दुनिया में। और हकीकत यह है कि अल हक दो लफ्ज़ हैं, देखने में हक लिखेंगे या अल हक लिखेंगे, हैं तो हा और काफ ही ना, अल तो अलग है, चले काफ दो दफ़ा हैं दो हर्फ, लेकिन वजन इतना कि ज़मीनों आसमान के वजन से कहीं बढ़कर, बल्कि अगर मैं ये कह दूं कि ज़मीनों आसमान तो कायम ही इसी पर है, तो ये मुबालगा नहीं होगा। ये जुमला लिख लीजिए, दो हर्फी नाम है लेकिन वजन इतना है इन दो नामों का कि ज़मीनों आसमान इस पर कायम है। बल्कि आप इमेजिनेशन में लाई ना, जैसे पिलर्स होते हैं किसी भी चीज़ का, स्टूल जो नीचे रखने की चीज़ है, वो जितनी स्ट्रांग होगी ना वो चीज़ उतनी महफूज होगी। तो अल्लाह के नाम पे ये सब कुछ कायम है। आपके मेरे लिए ये सारी चीज़ें पढ़ना सुनना इसलिए भी ज़रूरी है कि आने वाली नस्लों को अलहक के बारे में ही शक में डाला जा रहा है। आज बच्चे भी कहते हैं, मामा रियली देर इज़ गॉड, आपको कैसे पता अल्लाह है? और वो एक मिथ है साइंस से ले ली कि जो चीज़ नज़र आ जाए उसको साबित कर दो, और जो दिखती नहीं वो है ही नहीं। अच्छा जरासीमों को मानेंगे, कोरोना नहीं देखा किसी ने, मान रहे हैं। अब इंग्लैंड से एक आ गया वो मान रहे हैं, चाइना से आ रहे मान रहे हैं, सब मानते हैं, लेकिन नहीं मानते तो रब को नहीं मानते। और अब अपना वजूद दिखाने के लिए कई कई दफ़ा बंदों को बेबस कर देता है, बिल्कुल बेबस कर देता। पहले जो लोगों ने मास्क थे वो पहने होते थे, मोस्टली वो लाइट कलर के, ब्लूइश, और जो नॉर्मल सा शेड चलता था, साफ लगता था कि मास्क पहना हुआ है। ये अब जो नया कोरोना के बाद वायरस आया है, या कह लीजिए कि मोर, अब मास्क बनाने वालों ने भी तरक्की कर ली, अब 90% लोग बाहर अगर आप देखें ना तो ब्लैक कलर के मास्क में है, और वो स्पेशल पैडेड है, कुछ उसमें किसी में ब्रीदिंग है और किसी में कुछ। दूर से यकीन करें 100% से लगता है चेहरों पर निकाब है, मास्क नहीं लगता वो, क्योंकि उसकी शेप भी बिल्कुल उन्होंने नाक के साथ नोक की बनाई, कि ज़ाहिर दिन ब दिन चीज़ें एडवांस हो जाती है। तो मैं ये सोच रही थी कि अलहक ऊपर से देख रहा है, कितना बड़ा एक हवा था हमारे अपने ही लोगों के बीच में कि चेहरे पे निकाब करके बाहर जाएंगे तो ये नॉनसेंस लगता है, चेहरा छुपाएंगे, चोरियां होंगी, डाकू हो जाएंगे, पता नहीं क्या करेंगे, और अब सारे जरासीमों के नाम पे चेहरा छुपा रहे। तो अल्लाह ने अपनी बात को करवाने के लिए मेरे आपका वक्त तो इंतज़ार नहीं करना ना, यानी समझिए साबित करने वाला। अलहक वो हस्ती है कि जब वो कुछ काम करवाना चाहे, कुछ करे, तो फिर वो करवा लेता है। सवाल ये है कि अलहक के हक का इजहार किस किस चीज़ में, कायनात की कौन कौन सी चीज़ है जो बोल बोल के ये साबित कर रही है कि अलहक है? तो सबसे पहले तो इंसान की तख्लीक, पिछले नाम के साथ भी हमने देखा था ना, एक बच्चे का वजूद, एक बच्चे का दुनिया में आना कितना नामुमकिन मामला है, लेकिन अलहक हर बच्चे की पैदाइश के बाद ये साबित कर देता है कि मैं हूँ। मैं एक पानी के कतरे को एक जीते जागते बोलते हंसते रोते मुस्कुराते बच्चे में बदल सकता हूँ, कितना बड़ा मास्टरपीस है एक बच्चा दुनिया में। आप देखिए, जिस्म में हड्डी है, गोश्त है, खून है, हम सबके जिस्म में ना, आगाज़ क्या है? बस आप देखिए, आप आटे से रोटी बनाएंगे, एंड तक वो आटा ही रहेगा, चावल तो नहीं बनेंगे ना। आप सब्जी बनाते हैं तो एंड तक वो पकने तक, खाने तक सब्जी ही रहेगी, वो गोश्त तो नहीं बन जाएगी ना। कभी सोचे इंसान कि इंसान के जिस्म में एक बूंद पानी वो हड्डी में कैसे बदला, वो गोश्त में कैसे बदला, उसमें इतने मुख्तलिफ क्यों आए? ये अलहक अपने वजूद का एहसास दिलवाते हैं, इंसान की तख्लीक में अल्लाह का वजूद है। एमएम पिक्तल एक बहुत ही मारूफ राइटर हैं, तो उन्होंने अपनी किताब में हिस्ट्री ऑफ अरब और इस तरह इस्लाम के बारे में भी कुछ चीज़ें लिखी हैं, तो उसमें उन्होंने एक चीज़ मेंशन की हुई है कि यूनानी आर्ट, ग्रीक्स आर्ट, जिसको आप आज भी मुजस्मा साजी कह लें या स्टैचूज़ की बात कर लीजिए, तो उसका इतना लोगों के दिलों पे गर्रा है कि एक मौके पे ये पूछा गया था कि अगर कोई ऐसी जगह हो कि वहाँ एक न्यू बॉर्न बेबी भी हो और एक ग्रीक स्टैचू भी हो और आग लग जाए और आपने दो में से बस एक को बचाना है, तो आप किसको बचाएंगे? तो मेजॉरिटी ने कहा था कि हम ग्रीक आर्ट के उस नमूने को बचाएंगे। क्यों? सवाल का इसलिए कि वो अब नापैदा है, अब नहीं होते ऐसे चीज़ें, अब ऐसे स्टैचूज नहीं होते, तो बच्चों का क्या, वो तो और आ जाएंगे। तो उस पे बात थी कि जब नेमतें बहुत मिल जाती हैं ना कसरत से, तो उसकी कदर नहीं रहती। अल्लाह सुब्हान तआला की नेमतें जब इतनी ज़्यादा मिलती हैं तो हम उसको अपना हक समझने लगते हैं, तो जब थोड़ी थोड़ी कभी कभार मिले तो उसकी कदर भी बहुत है। इसी तरह शायद इल्म भी हमें सुबह शाम मिले तो हम कहते हैं छोड़ो अब क्या करना है, छोड़ो फिर से, और जब बहुत मिलता है तो फिर बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। हाँ, कोई एक महीने में एक दफ़ा या हफ्ते में एक बार या साल में एक बार बुलाए तो फिर हज़ारों जमा हो जाएंगे कि चलो ठीक है करते हैं। तो अल्लाह के साथ इंसान का ये मामला है, जो कि उसकी नेमतें कसरत से मिल रही हैं, बगैर पैसे के मिल रही, बगैर माल के लगाए मिल रही, तो लोग कदर ही नहीं करते। कलीलों में इबादे शुकूर। तो बिल्कुल इसी तरह से इंसान का अपना वजूद जो है वो इस बात की दलील है। फिर दूसरी बात है कि जन्नत और जहन्नुम, नारू का हक्कुन व जन्नतु का हक्कुन, अभी हम दुआ सीखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला। फिर इस तरह सूरज और चांद का वजूद, कभी आपने महसूस किया ये कितनी बड़ी चीज़ है? अल्लाह अकबर, क्या ये इन्ना फ़ी ख़ल्क़ि समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़ि लैलि वन नहारि लआयात लिउलिल अलबाब, क्या ये आयात हमें हक तक की मार्फत नहीं देती? और आप देखिए, व तवासु बिल हक़्क़ि व तवासु बिस सब्र, अल्लाह ने चार इंग्रेडिएंट्स जो सक्सेस के दिए, वला सरिन अल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व मिलु सालिहाती व तवासु बिल हक़्क़ि व तवासु बिस सब्र। इसमें आप देखिए, तवासी बिल हक़, एक दूसरे को हक बात की नसीहत करना, ये फोर्थ पिलर ऑफ दी सक्सेस है, नुकसान को नफे में बदलने वाली चीज़ है। फिर सर आप देखिए, पूरी कायनात हक है, सब कुछ सच है, तो जितना ज़्यादा आप अल्लाह ताला की चीज़ों को देखें, ज़रा सी इस इमेज पे गौर कीजिए और सूरज और चांद को देखिए, कैसे सूरज ऐसे आंख मचोली खेलता है जब बादल आ जाते हैं, और कैसे सूरज जाता है और चांद निकलता है। सच्ची बताऊं, अगर कभी ना देखा हो ना ये मंजर, और कभी वंस अ वाइल्ड साल में एक दफ़ा सूरज निकलता और एक चांद होता, तो उस दिन सारे काम छोड़ के लोगों ने देखना था सूरज निकला चांद निकला। जैसे आज भी नॉर्दर्न साइड पे, नॉर्वे में ऊपर लोग देखने जाते हैं मिड नाइट सोल, आधी रात का चांद, गर्मियों में कुछ ऐसे वक्त होते हैं कि बस सूरज डूबता ही नहीं और इधर गिरा और उधर ऊपर चढ़ गया, इधर डूबे उधर निकले हैं। तो जो चीज़ रोज़ होती है, कितने लोग हैं जो सुबह सनराइज़ देखने के लिए जागते हैं, वो तो और पर्दे गहरे डाल के सोचते हैं कि अभी तो नींद आई है, सारी रात हम जागते ही रह गए। तो कसरत से जब नेमतें होती हैं ना, तो इंसान उसकी वैल्यू नहीं पहचानता, हालांकि सूरज और चांद का वजूद मालिक के होने की दलील है। इसके ऊपर इंसान अपने आप को जमा के रखे तो फिर उसको समझ आता है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि अल्लाह सुब्हान तआला सूरत अर्रौद की आयत नंबर 2 में फरमाते हैं, अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ अस्समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون। अल्लाह वो है जिसने आसमानों को बुलंद किया बगैर सतूनों के जिन्हें तुम देखते हो, यानी दो तरह से इसको तर्जमा किया जाता है, यानी सतून हैं और तुम नहीं देख रहे, या स्तून है और तुम उनको देखते हो, क्योंकि रुक जाएंगे अगर पीछे बग़ैर ही आमा दिन पे तो मानी और होगा, और तरव नहा को साथ पढ़ेंगे तो और होगा, ये मानी इसमें। फिर वो अर्श पर बुलंद हुआ और इसने सूरज और चांद को मुसख़र किया, हर एक एक मुकर्रर वक्त के लिए चल रहा है, वो हर काम की तदबीर करता है, खोल खोल कर आयात बयान करता है ताकि तुम अपने रब की मुलाकात का यकीन कर लो। कितनी बड़ी निशानी है उसके वजूद की। सही बुखारी की रिवायत है, 3435 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो वहदहू ला शरीक लहू है, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं, और ये कि ईसा अलैहिस्सलाम इसके बंदे और रसूल हैं, और इसका कलिमा है जिसे पहुंचा दिया था अल्लाह ने मरियम तक, और एक रूह है इसकी तरफ से, और यह कि जन्नत हक है और दोजख हक है, तो इसने जो भी अमल किया होगा आखिर अल्लाह ताला इसे जन्नत में दाखिल करेगा। वलीद ने बयान किया कि मुझसे इब्ने जाबिर ने बयान किया, इनसे उमैर ने और जुनादा ने, और अपनी रिवायत में ये ज़्यादा किया, यानी ये एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं उसमें, कि ऐसा शख्स जन्नत के आठों दरवाज़ों में से जिससे चाहेगा दाखिल होगा। तो अब देखिए हक की बातें ना सिर्फ ये है कि अल्लाह की हस्ती तक बल्कि उसके भेजे हुए पैगम्बरों तक भी हैं। करना क्या है कि अलहक का हक किसी और को नहीं देना, लिख लीजिए ये बात, अलहक का हक सिर्फ हक को ही देना, अलहक को देना। जिंदगी में बड़े आराम से हम अल्लाह तआला के हुकूक पकड़कर बंदों को पकड़ा देते हैं। जब कुरान से ताल्लुक जुड़ता है ना, फिर सबसे बड़ी तब्दीली ये आती है, आप बंदों से कुछ नहीं लेते, उनके हक उनको ही दे रहे हैं, लेकिन उनको जो अल्लाह वाले हक दिए थे ना, वो एक एक करके वापस लेते हैं, तो लोग आपसे दुश्मनी करते हैं, कहते तुम बदल गई हो, तुम चेंज हो गई हो, तुम्हें रिश्तेदारों का परवाह नहीं, सिला रहमी नहीं, ये दीन क्या सिखाता है तुम्हारा। तो असल में आप रिश्तों के नाम पे बाज़ दफ़ा बीवियां शोहरों को वो हक दे चुकी होती हैं जो नहीं देना, और वो कोई नहीं देती जो देना होता उस बेचारे को। देखिए खिदमत कीजिए, उसका ख्याल रखिए, उसकी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी कीजिए, लेकिन ला तात अली मखलूक इन फी मासीयतिल खालिक, जिस चीज़ में खालिक की नाफरमानी है उसमें मखलूक की बात नहीं माननी। और नाम क्या कहती शोहर, मसला एक ब्रोज बनानी है, मेरे हस्बैंड नहीं पसंद करते। अच्छा वो आपको इतने गौर से देखते हैं कि एक बाल गिन के भेजते हैं आपको, अच्छा नहीं मेरे मियाँ नहीं चाहते ना। और जो बात नहीं माननी होती हम मानते हैं, मतलब आपके शोहर आपको कहें कि पिकनिक पे जा रहे हैं बेगम, अपना गरारा पहनो, झूमर लगाओ, और मैं हाथ पकड़ के तुम्हें पानी में ले जाऊंगा, तो कितनी समझदार औरतें जो मानती हो कहेंगी क्या मतलब है, मैंने तमाशा बनना है, मैं तो नहीं पहनूंगी। और वो आपसे कहें कि तपती दोपहर में ज़रा वो प्योर वूल का स्वेटर तो पहन के आओ जो मैं लंदन से लाया था, पहनती हम खवातीन, लेकिन जहाँ बात दूसरी होती है हम फौरन दाम डाल देते हैं। तो जब आपको अल्लाह की हक की समझ आती है ना, फिर उसके बाद आप इस तरह की गलतियाँ नहीं करते, और ये शिर्क की वो चीज़ है जिसको हम समझते नहीं है। देखिए इबादत क्या है कि किसी ज़ात की इंतहाई अजमत और मोहब्बत की बिना पर उसके सामने इंतहाई आजजी और इनकसारी का इजहार करना। अल्लाह ताला के सिवा किसी मखलूक के साथ ऐसा मामला किया जाए तो यही शिर्क है। इससे मालूम क्या होता है कि शिर्क सिर्फ उसी को नहीं कहते कि बुत परस्त की तरह किसी मूर्ति को पूजना या उसको अल्लाह के इख्तियारात में मालिक समझना, बल्कि किसी की अजमत, मोहब्बत, इताअत का दर्जा देना, ये सब कुछ अल्लाह का हक है। और याद रखिए इसमें शिरक जली भी है, वाज़े खुला, जली कहते हैं ना खुला मन, जलवा जो होता है ना लफ्ज़, वही है ये। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं यहूद और नसारा के शिरक के बारे में, सूरह तौबा के आयत 31 है, इत्तखज़ु अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह, इन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर अपने आलिमों और दरवेशों को रब बना लिया। हज़रत अदी बिन हातिम जो नए नए मुसलमान हुए थे, तो उनको लगा था कि ऐसा तो नहीं किया जाता, ये तो शायद एक इल्ज़ाम ही ना हो ऐसी चीज़ों पे। तो खैर किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के नबी के पास आकर जब उन्होंने अपना कंसर्न शो किया कि ऐसा तो नहीं है, तो आपने फरमाया क्या तुम अपने उलमा की हराम करदा चीज़ों को हराम और उनकी हलाल को हलाल नहीं कहते, यानी मीन ये नहीं सोचते कि अल्लाह किसको हलाल या हराम कहता है, बस अपने उलमा की बातों पे आते हो, बगैर दलील के मानते हो। कहा ये तो हम करते हैं, तो कहा यही है उनको रब बनाना। आपने फरमाया यही इबादत है। तो क्या पता चला, किसी चीज़ के हलाल या हराम करार देने का हक सिर्फ अल हक को है। जो शख्स इसमें किसी दूसरे को शरीक करार देगा, अल्लाह ताला के अहकाम हराम और हलाल मालूम होने के बावजूद इनके खिलाफ किसी दूसरे के कॉल को वाजिबुल इत्तबा समझेगा, वो गोया इसकी इबादत करेगा और शिर्क में मुब्तला होगा। और कई चीज़ें ऐसी जिसको हम शिर्क समझते ही नहीं, लेकिन असल में वो बहुत बड़ा शिर्क होता है। तो लिहाजा क्या पता चला कि अल हक को हक दिए बगैर हम बच नहीं सकते। फिर इस तरह याद रखिए कि अल्लाह ताला और उसके मुतल्लिका हर चीज़ सच भी है और हक भी है। आप अल्लाह के सिवा किसी फरिश्ते को, पैगंबर को, वली को, किसी इंसान को अल्लाह ताला की तरह ना तो कादरे मुतलिक समझ सकते हैं, यानी ही कैन डू एवरीथिंग, और ना मुख्तारे कुल समझ सकते हैं। फिर उससे अपनी हाजतें मांगना, किसी के सामने खड़े होकर उसे अपनी हाजात मांगना, ये तो खुल्लम खुल्ला कुफर है। आम मुशरिकीन बुत परस्त भी इसको कुफर कहते थे, अपने बुतों, अपने देवताओं को बिल्कुल अल्लाह के मिसल कादरे मुतलक और मुख्तारे मुतलक ये वो भी नहीं मानते थे। वो कहते थे इनसे हम मांगते हैं लेकिन ये आगे अल्लाह से मांग देते हैं। फिर इस तरह याद रखिए कि जब आपको अल हक की बात समझ आ जाती है ना, तो फिर आप इस्तेआनत यानी या का नाबुदू व या का नस्ताइन, इसको अल्लाह के सिवा किसी और के साथ नहीं रखते। कुरान इसको बातिल और शिर्क कहता है। किसी इन जिंदा या मुर्दा के पास ये ताकत है ही नहीं कि वो आपकी मदद कर दे। और कहाँ कोई शख्स कब्र से निकल कर आपको करे, या फिर कोई बुत या लकड़ी जिसको आपने खुद घड़ घड़ा कर बनाया। तो याद रखे, शिर्क की बारीकियों का इस वक्त मौका नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों को यहीं से धोखा लगा। उन्होंने कहीं फरिश्तों को अल्लाह के इख्तियार सुपुर्द किए, कहीं जिन्नों को किया, जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहकर नसारा ने अपने अकायद को बिगाड़ा। आज भी कुछ लोग औलिया अल्लाह को औलिया अल्लाह से ज़्यादा खुदा का शरीक समझने लगते हैं। देखिए, औलिया अल्लाह को मानिए, कौन नहीं मानता। अल्लाह फरमाता है, इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने आलमोस्ट 60 नाम पढ़ लिए अल्लाह ताला के, आपको बहुत अच्छी तरह पता चल गया। अल्लाह ताला खुद अल वली है, अल मौला है, किस तरह वो अपने नेक बंदों की तारीफें करता है। अल्लाह सुबहाना ताला कुछ लोगों को करामात भी दे देता है। सरसरी नज़र से लोग देखते हैं, उनको मुगालता हो जाता है, अच्छा फिर ये भी कर सकते हैं। हालांकि अल्लाह किसी को कोई थोड़ा बहुत इख्तियार दे दे किसी चीज़ का, तो वो उनके इख्तियार में तो नहीं रहता ना। तो याद रखिए, एग्जेजुरेशन, मोहब्बत में बढ़ना या नफ़रत में बढ़ना, ये दोनों तबाही हैं। अल्लाह को अल्लाह का हक दीजिए, अंबिया कराम को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका मुकाम दीजिए, औलिया कराम को उनका मुकाम दीजिए, अंबिया रसूल फरिश्ते हर एक, ये आप देखिए कि अल्लाह ताला का जो कलाम पाक है कुरान पाक, उसका हक दीजिए। नबी सल्लम ग़ज़वा बदर में अपने हाथ में एक मुट्ठी भर के कंकर फेंकते हैं और वो कुफार की आंखों में लग गया और उन झुंझला गए और उनके हाथों से तलवारें गिर गईं। और अल्लाह के नबी का ये अमल कुरान में सूरत अल अनफाल की आयत 17 में कैसे आता है, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, आपने नहीं फेंका, ये तो अल्लाह ने फेंका है जबकि फेंका था। यानी अल्लाह अपनी तरफ निस्बत लेता है नबी के अमल को, तो ये अल्लाह की शान होती है। याद रखिए, अल्लाह सुबहाना ताला जो काम करना कराना चाहता है वो कर लेता है। तो याद रखिए, अल्लाह अगर खुद हक है ना, तो उसका कुरान भी हक है, एक एक लफ्ज़ में हक है। अम्बिया रसूल भी हक थे, अल्लाह के फरिश्ते भी हक हैं, हर तरह से अल्लाह ने इसको हक पे रखा है। ख़ास तौर पे आप देखिए कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक, 950 ईयर्स तक कौम को बुलाते रहे, और जब कौम ने उनको ज़रा सी बात की कि अच्छा भी सच्चे हैं तो अज़ाब ले आइए जो आप कहते हैं, तो देख ले, तो उन्होंने क्या कहा था, क़ाल इन्नमा यातीकुम बिहिल्लाह इंशा वमा अंतुम बिमुजिज़ीन, यानी मुझसे के तौर पर आसमानी अजाब नाजिल फरमाना या करना मेरे कब्ज़े में नहीं है, हाँ अल्लाह चाहे तो वो अजाब देगा, फिर भागोगे नहीं। तो याद रखिए, अम्बिया कराम हक पे थे, वो अपने हाथों में चीज़ें नहीं लेते थे। इसी तरह अगर आप सूरत अल अम्बिया में देखिए आयत नंबर 11, अम्बिया कराम की एक जमात का कौल है कि वमा कान लना अन नातियकुम बिसुल्तान, किसी का मौजज़ा सादर करना हमारे हाथ में नहीं है, हम कोई मौजज़ा अपनी मर्जी से नहीं ला सकते, इल्ला बिस्निल्ला, मगर अल्लाह ताला जब तक ना चाहे, वालल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, और अल्लाह ताला ही के ऊपर तवक्कुल करते हैं ईमान वाले। तो क्या पता चला, अल्लाह की मर्ज़ी सबसे ऊपर, क्योंकि वह अल्हक है, वो दिखाना चाहे पैगंबर से करवा ले, वली से करवा दे, कुछ भी करामत करा ले, लेकिन ना चाहे तो किसी के इख्तियार में नहीं है। तो अपने अकीदे की इस्लाह चाहिए हम सबको। ख़ास तौर पे आप देखिए नबी सल्लम, जिनसे हम कितनी क़ुर्बत महसूस करते हैं। आप जब सिर्फ़ कुरान का तर्जुमा पढ़ लेते हैं ना, समझ के हल्का फुल्का सा अपनी ज़ुबान में, तो आपको बहुत सारी बातें समझ आती हैं। और अमूमन लोग इसी से भिदकते हैं, कहते हैं ये बड़ा मुश्किल है, वैसे हम पढ़ देते हैं एक दो दो सपारा, ठीक है, लेकिन आप तर्जुमे के बग़ैर या समझे बग़ैर जो पढ़ रहे हैं, आपको खुद नहीं पता आप क्या पढ़ रहे हैं। तो जब तक आप कुरान पाक को नहीं पढ़ेंगे, आपको समझ नहीं आएगा, ना अल्लाह की रज़ा मिलेगी, ना उसकी इताअत कर सकेंगे। आप देखिए कि कोई शख्स बल्ब और पंखे की कदर ना पहचाने और उनको ज़ाया कर दे, तो वो रोशनी से भी महरूम होगा, हवा से भी महरूम होगा। इसलिए हम सब को इस चीज़ को देखना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुरान क्या कहता है, सूरत निसा की आयत 105 अगर आप देखें, इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिलहक्की لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا, ए नबी, हमने ये किताब हक के साथ आपकी तरफ नाजिल की है, लफ्ज हक पे गौर कीजिएगा, ताकि जो राह रास्त अल्लाह ने आपको दिखाई है इसके मुताबिक लोगों के दरमियान फैसला कीजिए और आप बददयानत लोगों की तरफ से झगड़ने वाले मत बनिए। देखिए, तकरीबन 2 रुकू हैं सूरत निसा की इस आयत के आगे पीछे। पूरा वाक्या है एक शख्स का, कैसे उसने अपनी बिरादरी का नाम लेकर और बिरादरी ने उसका नाम लेकर हक को बातिल करना चाहा। अल्लाह के नबी इंसान थे, जब तक अल्लाह ना चाहे उनको कैसे पता गैब की खबरें। करीब था कि आप गलत शख्स के हक में फैसला कर दें, अल्लाह ने कुरान पाक नाजिल कर दिया कि ना ना ए मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको हमने हक दे दिए, हक किताब है, अब आप इसके मुताबिक फैसले करें। और जितना ज़्यादा आप इस चीज़ के ऊपर गौर व फिक्र करते हैं उतना आपको समझ आता है। और याद रखिए कि अल्लाह का दीन सच है। सुलह हदैबिया का मौका मुसलमानों के लिए एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक मौका था, जिस वक्त वाकई मुसलमान टूट सकते थे, उनकी टीम टूट सकती थी, दीन के नाम पे फट सकते थे। अगर अल्लाह उनको ना थामता तो वो वक्त ऐसा था कि वो तो अल्लाह के नबी को भी पीछे कर देते। और उस वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने आपसे सवाल किया था कि अल्लाह के नबी, क्या ये इस्लाम सच्चा दीन नहीं है, हक दीन नहीं है, आप सच्चे नबी नहीं है? तो आपने फरमाया था कि खत्ताब के बेटे, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, वो मुझे कभी तबाह ना करेगा। ये सही मुस्लिम की रिवायत है 4633।